पढ़ाई में ध्यान लगने की वजह से आरवी का ध्यान अयांश से हट गया था। उसे अयांश का ख्याल नहीं आया था, पर जैसे ही किताबें छोड़ सोने के लिए बेड पर आकर लेटी, उसे फिर अयांश के ख्यालों ने घेर लिया। कल रात जो उसके और अयांश के बीच हुआ था, वो उसके सामने चलचित्र की भांति चलने लगा। अयांश की दर्द भरी आँखें और अयांश का अपने हाथ पर छुआ आरवी को बेचैन कर उसकी दिल की धड़कनें बढ़ा गया था। वो बार बार खुद को सामान्य करते, खुद को समझाते हुए अयांश के ख्यालों से बचने की कोशिश करती, सोने की कोशिश करने लगी। पर आरवी की आज हर कोशिश बेकार रही थी। थकावट के बावजूद भी वो सो नहीं पाई थी, मानो नींद आंखों से आकर बार बार लौटकर वापस जा रही हो। उस सबसे परेशान होते हुए और ना सो पाने के कारण वो करवटें बदलती रही। जब हद पार हो गई, जो वो चाहती थी उसका उल्टा हुआ, तो इरिटेट होकर उसने खुद पर ब्लैंकेट उतार साइड में फेंक दिया और लाइट ऑन कर झुंझलाते हुए अपना सिर पकड़ते हुए बोली, क्या है, सोना चाहती हूँ पर कमबख्त नींद पास आने की बजाय मानो दूर भाग रही हो मुझसे आरवी। इतना कहे आरवी बेड से उठ गई। पहले तो उसने दो ग्लास पानी गटक लिया, उसका गला इस वक्त बहुत सूख चुका था। पानी पीकर ग्लास टेबल पर रखते हुए बोली, अभी पानी पिया था थोड़ी देर पहले, इतनी सी देर में गला ऐसे सूख गया मानो बरसों से प्यासी हूँ। एसी रूम में लगी, एसी की ओर देखते हुए, लगी है रूम में फिर भी इतनी गर्मी, बोलते हुए रिमोट टेबल से उठाकर उसे फुल किया और रिमोट बेड पर फेंक कर लंबी लंबी सांसें लेते हुए बोली, आप गर्मी कम होगी। इतना कहे आरवी एक बार रूम से बाहर आई, उसने नीचे झाँक कर देखा और फिर अयांश के रूम के दरवाजे की ओर, फिर वापस अंदर चली आई और रूम बंद कर वापस आकर बेड पर लेट गई। आप सोती हूँ, कहे फिर ब्लैंकेट ओढ़ा और हाथ बढ़ाकर लाइट बंद कर दी। पर फिर वही हुआ, आरवी नहीं सो पाई और फिर ब्लैंकेट फेंक लाइट ऑन कर बेड पर बैठ गई। क्या है मिस्टर मेहरा, आपके ख्याल तो भूतों जैसे चिपक गए हैं, हनुमान चालीसा पढ़ ली फिर भी पीछा न छूट रहा। टेबल पर रखी बप्पा की मूर्ति की ओर देखते हुए, बप्पा मुझे सोना है चैन से, पर अजीबो गरीब ख्यालों ने परेशान करके रख दिया है मुझे, कैसे सोऊं? अभी की वो बात रह रहकर दिमाग में आ रही है, उसने मजाक किया था, क्यों मैं इतना सोच रही हूँ, ये जानते हुए कि इतनी जल्दी मिस्टर मेहरा दुनिया छोड़कर नहीं जाने वाले, अभी उम्र ही क्या है, है ना बप्पा? शांति दो बप्पा, शांति, ये पक्का मिस्टर मेहरा ने मुझे परेशान करने का नया तरीका निकाला है, गर्दन झटकते हुए। इस सबसे आरवी अपना ध्यान हटाते हुए बोली। आरवी बेड से उठी और अपनी बुक्स उठा लाई, पर कोई फायदा नहीं, इस वक्त आरवी का मन और तन दोनों थक चुका था। पढ़ाई में भी वो अपना ध्यान नहीं लगा पाई, तो फिर अयांश पर उसका ध्यान चला गया। उसके अभी तक घर न आने को लेकर वो बेड से उठकर पहले तो रूम में इधर उधर चलने लगी, तभी उसका ध्यान अपने फ़ोन पर गया। आरवी ने फट से अपना फ़ोन उठाया। विनीत जी, या वर्तिका से पूछूं क्या मिस्टर मेहरा के बारे में? पर आरवी, वो क्या सोचेंगे तेरे बारे में, यूं तो कहती है फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मतलब नहीं। हाँ फ़र्क नहीं पड़ता, पर तुझे सोना भी तो है ना, जब तक वो डेविल कुमार घर नहीं आ जाते तुम सो भी तो नहीं पाओगी। प्यार में पड़े लोगों का कोई भरोसा भी नहीं, पागलपन में कब क्या करवा जाए कुछ पता नहीं, और मिस्टर अक्करचंद ये तो वैसे भी सटिया गए हैं, दिमाग के पेंच ढीले क्या, ऊपर का माला ही खाली है इनका, तभी तो अजीबोगरीब हरकतें करते रहते हैं, कहीं अभी की कही बात सच हो गई तो, सोचते हुए। नहीं नहीं, आरवी क्या सोच रही है, अपने सिर पर थप्पड़ मारते हुए, उनके जीते रहते बचना मुश्किल हो रहा है, मरने के बाद तो मेरा और जीना दुर्भर कर देंगे डेविल कुमार भूत बनकर। और सुना है ना आजकल के भूत प्रेत कितने खतरनाक होते हैं, कितने पावरफुल होते हैं, थूक निकलते हुए। तू तो गई आरवी फिर काम से, जिंदा रहते जज साहब इनसे मेरा पीछा ना छुड़ा सकी, उनके मरने के बाद भूत बनने पर तांत्रिक बाबा ना छुड़ा पाएंगे, मुंह बनाते हुए। तभी आरवी ने मुंह से फूंका, आरवी बस कर, तुम तो इन सबको नहीं मानती, सुनी सुनाई बातों पर यकीन करती फिर क्यों फालतू में दिमाग खराब कर रही है। सही कहते हैं दादी माँ, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, और मैं तो इस वक्त शैतान के ही घर में हूँ, जिसने दिमाग खराब करके रखा हुआ है इतना कि अच्छा सोचने समझने की शक्ति गायब हो गई है, उल्टा फिजूल की बातें बड़बड़ा रही हूँ, फोन की ओर देखते हुए। दो बच्चों के आरवी, दो, इस वक्त फोन मैसेज करना सही रहेगा क्या? खुद तो परेशान है ही, क्यों औरों की नींद हराम करनी? फोन बेड पर फेंकते हुए, ये सिचुएशन तो झेल सकती हूँ, फिर दोस्तों के सवाल नहीं झेले जाने, मेरी बात के हजार मतलब निकाल लेंगे, वो भी ऐसा जैसा कुछ हो भी ना, गर्दन झटकते हुए। बड़ा गुस्सा आ रहा है मिस्टर मेहरा आप पर, सामने हो ना आप इस वक्त तो आपका गला दबा दूं मैं, भूत बनने लायक ना छोड़ूं, सीधा मुक्ति दिला दूं, प्यार करते हैं ना मुझसे आप, मेरे हाथों मरकर तो आपको अच्छा ही लगेगा, खुशनसीब समझेंगे आप खुद को, सीधा स्वर्ग लोग जाएंगे जहाँ प्यारी प्यारी अप्सराएं डेविल कुमार का वेलकम करेंगे। धरती पर तो भाव देते नहीं लड़कियों को, चाहे कोई कितना ही मरे, क्या पता वहाँ जाकर आपकी अक्कड़ कम हो जाए और मेरा कल्याण। हवा में हाथ उठाकर रूम की छत की ओर देखते हुए, खुद से ही बातें करते हुए, अयांश के बारे में सोचते हुए आरवी बार बार पानी पीती रही। एसी फुल करती तो ठंड लगती, कम करती तो गर्मी। उस सबसे तंग आकर आरवी रूम से बाहर चली आई और अपने और अयांश के रूम के बाहर इधर उधर चलने लगी। बार बार रेलिंग के पास आकर नीचे दरवाजे की ओर झांक कर देखती और फिर अयांश के बारे में सोचते हुए उसे कोसते हुए इधर से उधर चलती रही। तीन बजने को थे, आरवी को उबासियों पर उबासियां आ रही थी। इधर उधर चलकर पैर भी थक गए थे, इतने कि उसके कदम लड़खड़ा गए। वो गिरने को हुई कि संभलने के लिए उसने रेलिंग का सहारा ले लिया और दरवाजे की ओर देखते हुए थकी सी आवाज में बोली, मिस्टर मेहरा। आरवी की पलकें लगातार झपक रही थी, मानो बेहिसाब थक चुकी हूँ, थकावट की वजह से या अयांश का इंतजार करते करते। वो तो आरवी ही जाने। तन कह रहा था जाकर सो जाओ, पर मन वो इजाजत नहीं दे रहा था। जब मन शांत नहीं तो तन को आराम कैसे आए। मन तन पर हावी हो चुका था कि आरवी तन को छोड़ मन की सुन रही थी। वो उस जगह रेलिंग पकड़े खड़ी नीचे झांकते हुए दरवाजे पर नजरें गड़ाई हुई थी कि अब मिस्टर मेहरा आए, अब मिस्टर मेहरा आए। आंखों में बेचैनी इस कदर समा गई थी कि अयांश को देखकर ही अब आंखें चैन पाए। तभी आरवी को अयांश के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने अपनी आंखें बड़ी कर बड़े ही गौर से दरवाजे की ओर देखा। अयांश बड़े बड़े कदम लेते अंदर आ रहा था। बीच हॉल आते ही अयांश की नजर जैसे ही ऊपर रेलिंग के पास खड़ी आरवी पर पड़ी, जो उसे ही देख रही थी। एक पल तो उसे लेकर अयांश हैरान हुआ, पर दूसरे ही पल वो मुस्कुराते हुए उसे वहीं खड़ा निहारने लगा। आरवी और अयांश एक दूसरे को देख रहे थे। तभी आरवी रेलिंग पर अपने हाथों की पकड़ मजबूत कर अपनी आंखें मूंद लेती है। ये देख अयांश उसे देखते हुए ऊपर चला आया। ज्यों ज्यों अयांश के कदमों की आहट करीब आती सुनाई पड़ रही थी, आरवी के दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। अयांश को देख आंखों ने तो चैन पा लिया, पर उसे पास आता देख मन घबराहट महसूस करते बेचैन हो उठा। पर अयांश को देख लग रहा था कि उसने आज बेहिसाब सुकून पा लिया हो, मानो यही चाहता हो। उसकी मुस्कुराहट बता रही थी कि आरवी को इंतजार करते देख और घर आते ही उसकी झलक पाकर उसे कितनी खुशी हो रही थी। अयांश आरवी के पीछे आ खड़ा हुआ। आरवी ने अपनी आंखें अभी भी मूंदे हुए थीं। तभी अयांश ने पीछे से अपनी बाहें आरवी की बाहों पर रख ली। ये देख आरवी ने अपने होंठ दांतों तले दबा लिए। तभी अयांश उसकी बाहों से अपने हाथ सरकाते हुए आरवी के हाथों पर ले आया और अपना चेहरा आरवी के कंधे पर टिकाकर उसके कान के पास फुसफुसाते हुए बोला, इंतजार कर रही थी मेरा।
ये सुन आरवी ने अपनी आंखों के साथ होंठ भी झट से खोल लिए। अपनी सांसों पर काबू पाते उसके होंठ कुछ कहने को हिलने को हुए कि तभी अयांश ने फट से आरवी को अपनी तरफ घुमा लिया। आरवी की पीठ रेलिंग से लगी हुई थी, मुंह खुला, आंखें फैली हुई थीं। अयांश ने रेलिंग पर अपने हाथ रख आरवी को अपनी बाहों की गिरफ्त में ले लिया। आरवी ने अपनी दोनों ओर अयांश की बाहों की ओर देख उसके चेहरे की ओर देखा, जो उससे थोड़ा ही दूर था। आरवी ने अयांश की आंखों में झांका, जो उसे ही एकटक देख रहा था। जैसे ही आरवी ने उसके चेहरे पर नजर डाली, अयांश भौहें उचकाते हुए फिर से बोल पड़ा, सोई क्यों नहीं अभी तक? अयांश के इस सवाल से आरवी हड़बड़ा गई। वो हड़बड़ाते हुए बोली, वो मैं, आगे कुछ कहती कि अयांश ने अपनी अंगुली आरवी के होंठों पर रख दी। इसी के साथ आरवी की बोलती बंद हो गई। आरवी फट से अयांश की अंगुली अपने होठों से दूर झटका देती है और इधर उधर देख अयांश की ओर देखती है, जो मुस्कुरा रहा था। एक बार तो उसे खुद को निहारते देख आरवी उसमें खो गई। दोनों को एक दूसरे की आंखों में अपना अक्स दिखाई दे रहा था। आरवी की इस वक्त की खामोशी मानो अयांश को उसके सवाल का जवाब दे गई हो, जो उसने अभी अभी आरवी से पूछे थे। तभी आरवी अयांश से नजरें हटाते हुए बोली, मुझे सोना है मिस्टर मेहरा। आरवी के इतना कहते ही अयांश ने आरवी की बाह पकड़ उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसी वक्त उसे अपनी बाहों में उठा लिया। ये देख आरवी चौंक गई। वो अयांश को देखते कुछ कहने को हुई कि अयांश उसके चेहरे की ओर देखते बोला, श्श, और आरवी को अपनी बाहों में लिए अयांश रूम की ओर बढ़ गया। आरवी फिर कुछ नहीं कह पाई। वो अयांश की तरफ हैरानी से देख रही थी। उसका एक हाथ अयांश के कंधे पर था और दूसरा लटक रहा था, जिसकी उसने मुट्ठी बांध ली थी। मुट्ठी बांधने वाली हरकत आरवी तब करती है जब उसे हिम्मत बटोरनी होती है, और इस वक्त उसे हिम्मत की ज़रूरत थी। एक वो अयांश की बाहों में उसके करीब थी और दूसरा अयांश उसे अपनी बाहों में उठाए कमरे में ले जा रहा था, और इससे आरवी की हालत उस वक्त ख़राब हो रही थी। क्रमशः